हेडिंग, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के नायक हैं। जाति से चंद्रवर्षी क्षत्रिय हैं और इनमें धीरोदात्त नायक के सभी गुण वर्तमान हैं। इनकी चाल ढाल व्यवहार आदि आकर्षक हैं। इनका शरीर लंबा चौड़ा तथा सुडौल है। इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों पर इनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। ये शूरवीर धार्मिक राजा हैं। शिकार खेलने में इनका खूब मन लगता है। इनकी वीरता की इतनी ख्याति है कि देवराज इंद्र भी अपनी सहायता के निमित्त इन्हें बुलाते हैं। ये बड़े मधुरभाषी हैं। प्रेमवदा इनके मधुर भाषण की प्रशंसा करती हैं। ये अपने कुल की प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखते हैं तथा अपने पूर्वज महाराज पुरु के पावन आचरण से सदा प्रेरणा लेते रहते हैं। ये कोई ऐसा कार्य नहीं कर बैठते हैं जिनसे इनके कुल की मर्यादा पर धब्बा लगे। इस प्रकार दुष्यंत सर्वश्रेष्ठ गुणों के प्रतीक एवं आदर्श राजा हैं। जिस समय राजा दुष्यंत तपोवन में प्रवेश करते हैं उस समय इनके दक्षिण बाहु फड़कने से शुभ शकुन होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वैसे ही कलश लेकर वृक्षों में पानी डालने के लिए आती हुई तीन तापस कन्याओं को देखते हैं। उनमें वत्कल पहने हुए शकुंतला को देखकर वे मन में सोचते हैं कि इस कृशांगी का सुंदर शरीर वत्कल के योग्य नहीं, फिर भी वत्कल से इसकी शोभा बढ़ गई है। सहज सुंदरी को क्या अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेवार से आवृत रहता हुआ कमल सुंदर मालूम पड़ता है और चंद्रमा में पड़ा कलंक भी उसकी शोभा बढ़ाता है। श्लोक। सरसिजे मनु विद्धम शेवलिनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वत्कलेनापि तन्वी किमेह मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। श्लोक संख्या एक। श्लोक संख्या 20 प्रथम अंक। हिंदी। राजा दुष्यंत को नैतिक चरित्र के विषय में बड़ा आत्मविश्वास था। जब राजा की दृष्टि शकुंतला के अंगों पर पड़ती है, इसके लाल लाल ओंठ अभिनय किसलयों की दीप्ति से स्पर्धा कर रहे हैं, दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं जैसी मनोहर प्रतीत हो रही हैं, और नया यौवन लुभावने कुसुम के समान उसके अंगों में व्याप्त हो गया है। इस रूप सौंदर्य से राजा का मन चंचल हो जाता है। महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश के समय अनुपम सौंदर्य से मंडित शकुंतला को देखकर उसके लावण्य कांति पर मुग्ध होकर प्रशंसा करते हैं और उसे पाने के लिए ललायित हो जाते हैं। फिर भी उनका विवेक ब्राह्मण कन्या के प्रति आकृष्ट होने से रोकता है। उनके मन से विचार उठता है कि क्या यह संभव है कि यह महर्षि कर्ण की ब्राह्मणतर भार्या से उत्पन्न हुई हो। शीघ्र ही निर्णय कर लेते हैं कि अथवा संदेह करना व्यर्थ, निश्चय ही यह क्षत्रियों के ग्रहण योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है। संदेहास्पद विषयों में सदाचारियों के अंतःकरण के विचार ही प्रमाण हुआ करते हैं। इस प्रकार दुष्यंत का आत्मसंयम पर पूर्ण विश्वास था। श्लोक। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्तयः। प्रथम अंक। श्लोक 22 हिंदी। फिर भी सही सही पता लगाते हैं। दुष्यंत विवेकहीन कामी पुरुषों के समान अंधे नहीं बनते। अवसर मिलने पर शकुंतला की सखियों से पूछ ही बैठते हैं, कुलपति कण्व तो अबाल ब्रह्मचारी हैं, आप लोगों की यह सखी उनकी कन्या कैसे? जब उन्हें शकुंतला विषयक सारा रहस्य ज्ञात हो जाता है, अर्थात यह शकुंतला अविवाहित है, इसके विवाह का किसी के साथ निश्चय नहीं हुआ है, यह क्षत्रिय को की कन्या होने कारण विवाह के योग्य है और यह भी मुझे चाहती है, इत्यादि निश्चय हो जाने के अनंतर ही वे शकुंतला से गांधर विवाह करते हैं। तपोवन से हस्तिनापुर लौटते समय शीघ्र ही बुलाने पर वचन देकर अभिज्ञान के रूप में प्रेम से उनकी अंगूठी दे देते हैं, पर दुर्भाग्यवश दुर्वासा के शाप के प्रभाव से उसकी स्मृति धूमिल हो गई और उससे कुछ भी स्मरण नहीं रहा। वे पर स्त्री समझकर दरबार में उपस्थित शकुंतला को ठुकरा देते हैं, फिर भी पाठक उन्हें दोषी नहीं समझते। अंगूठी की प्राप्ति के पश्चात जब सारी बातें स्मृति पटल पर आ जाती हैं तब वे पश्चाताप की तीव्रता से व्यग्र हो उठते हैं, अतिशय दुख का अनुभव करते हुए सामयिक उत्सवों से विरत होकर समय बिताते हैं। अंत में इंद्रपुरी से लौटते समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर शकुंतला का साक्षात्कार उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं। श्लोक। सुतनु हृदयात प्रत्यादेशव्यलिकमुपैतुते किमपि मनसः सम्मोहो मे तदा बलवान भूत। अंक 7। श्लोक 24 हिंदी। राजा दुष्यंत समदर्शी आदर्श पति हैं। अनेक स्त्रियों से संबंध रहने पर भी इन्हें नैतिकता का सदा ध्यान बना रहता है। नए स्त्री से प्रेम हो जाने पर भी ये पहली स्त्रियों को भूल नहीं जाते। वे अपनी रानियों की भावनाओं का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। पंचम अंक के आरंभ में रानी हंस पदिका के उपालम्ब पूर्ण गीत को सुनकर वे उसे सांत्वना देने के निमित्त माधवी को भेजते हैं। संस्कृत। गच्छ नागरिक वृत्तया संज्ञापय नाम। हिंदी। षष्ठ अंक में प्रमद वन में चित्रपट पर शकुंतला की छवि देखने में मग्न राजा दुष्यंत चतुरिका चेटी में महारानी वसुमती के आने का समाचार सुनकर मान गर्विता महारानी अप्रसन्न होंगी यह सोचकर शकुंतला के चित्रपट को विदूषक से अन्यत्र भेज देते हैं। संस्कृत: वयस् उपस्थिता देवी बहुमान गर्विता च भवानी माँ प्रतिकृतिम रक्षतु। वह वसुमती के सम्मान एवं आदर में कमी नहीं आने देना चाहते हैं। इस प्रकार समदर्शी नायक दुष्यंत के चरित्र को देखकर सानुमती अप्सरा उसकी प्रशंसा करती हैं। दुष्यंत एक धर्मपरायण राजा है, आदि से अंत तक उन्होंने धर्मनिष्ठा का पालन किया है। ऋषियों की प्रार्थना पर ही महर्षि कर्ण के आश्रम यज्ञ की रक्षा में संलग्न है। उन्हें हस्तिनापुर में से आदरणीय माँ का संदेश मिलता है, आगामी चौथे दिन मेरे उपवास की पारणा है, उस अवसर पर आपका उपस्थित होना आवश्यक है। माता का यह संदेश सुनकर वे द्विविधा में पड़ जाते हैं, एक ओर तपस्वियों के यज्ञ का रक्षा कार्य जिसके लिए पहले ही वचन दे चुके हैं, दूसरी ओर पूज्य माता का आदेश, क्या हो कैसे हो। वे बड़ी बुद्धिमानी से दोनों कार्यों को संपन्न करने का मार्ग निकालते हैं। विदूषक को माँ की सेवा में भेज देते हैं क्योंकि माता ने उसे भी तो पुत्र की भांति ही माना है। दुष्यंत के हृदय में ऋषियों के प्रति अपार आदर भाव है। वे उनकी रक्षा तथा सेवा से प्राप्त पुण्य के को अमूल्य निधि समझते हैं। वे विदूषक से स्पष्ट कहते हैं। श्लोक: यदु तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तत्फलम तपः षड् भागमक्षयम् तदात्यरण्या हीनः। अंक 2 श्लोक 13 हिंदी। अतः वे ऋषियों के आदेश पालन में अपने को कृत्य कृत्य समझते हैं। मृगया के शिकारी होते हुए भी वैखानसों के कहने से वे मृग को छोड़ देते हैं, उस पर बाण नहीं चलाते। तपोवन की मर्यादा अक्षुण बनाए रखने के लिए वे विनीत भाव से आश्रम में प्रवेश करते हैं और अपने सैनिकों को आश्रम की मर्यादा का बोध कराते हैं। जब सेना का हाथी तपोवन में गड़बड़ मचाता है तब वे अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैं तपस्वियों की दृष्टि में अपराधी ठहराया गया हूँ। संस्कृत: कथम पराधः तपस्वी नामस्मि। हिंदी: द्वितीय अंक में जब तपस्वियों की तरफ से तपोवन की रक्षा के निमित्त निवेदन आता है तब वे कहते हैं कि तपस्वियों की क्या आज्ञा है। संस्कृत: किम आज्ञा पयंती। हिंदी: पंचम अंक में जब शकुंतला के निराकरण से शारंगार और बड़ी बड़ी बातें कहता है तब वे क्रुद्ध नहीं होते, केवल इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं कि संस्कृत विशेषणाधिक्षिप्तो अस्मि। हिंदी: सप्तम अंक में मारीच ऋषि के आश्रम में ऋषियों के प्रति उनका व्यवहार अपार श्रद्धा को व्यक्त करता है, उनके आशीर्वाद को अपने भविष्य का मूल मंत्र समझते हैं। दुष्यंत एक उच्च कोटि के शासक हैं, उनमें 3 गुण प्रमुख हैं, नंबर 1 कर्तव्य परायणता, नंबर 2 राजा प्रेम, नंबर 3 लोभ का अभाव। प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत गज के उपद्रव को सुनते हैं तो तत्काल संभ्रांत होकर कुटी में जाने के लिए उद्यत ऋषि कुमारियों को सांत्वना देकर रक्षा के लिए चल देते हैं। द्वितीय अंक में जब 2 ब्रह्मचारी तपोवन की रक्षा के निमित्त बुलाने आते हैं तब वे कहते हैं कि आप दोनों आगे आगे चलें, मैं भी पीछे पीछे आ ही गया। संस्कृत: गच्छन्ताम पुरो भवन्तो अहम् पेनुपद मागत एव। हिंदी: पंचम अंक में कंचुकी के वाक्य से प्रतीत होता है कि वे प्रतिदिन दरबार में बैठते हैं एवं प्रजाओं के मुकदमों को सुनते हैं, उनमें शासन तथा राज्य व्यवस्था से फुर्सत नहीं मिलती। वे प्रतिदिन मंत्रियों के कार्यों का स्वयं निरीक्षण किए बिना कोई भी आदेश प्रसारित नहीं होने देते। वे बड़े ही प्रजावत्सल हैं, अपनी प्रजाओं को स्वजनों के समान समझते हैं। षष्ठ अंक में एक प्रजारंजक राजा के समान प्रतिहारी से कहते हैं कि मेरे राज्य में यह घोषणा करा दो कि जिसका जो संबंधी मर गया हो वह राजा दुष्यंत को अपना वह संबंधी समझे, अर्थात यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो तो मैं उसका पति तो नहीं हो सकता, किंतु यदि किसी का पुत्र पिता या भाई आदि मर जाए तो मुझे हो उस जगह पर समझे। श्लोक: येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स स पापा रिते ताशाम दुष्यंत इति दुष्यताम। अंक 6 श्लोक 23 हिंदी: दुष्यंत बड़े ही आदर्शमय निर्लोभी राजा हैं, वे अनुचित मार्ग से अपना कोष बढ़ाना नहीं चाहते। जब वे निसंतान समुद्र व्यापारी धनमित्र नाम के बनिए के नौका दुर्घटना के मरने का समाचार सुनते हैं तो वे उसके धन को अपने कोष में नहीं मिला लेते, वे इस बात की खोज करते हैं कि उसकी स्त्रियों में से कोई गर्भवती है या नहीं। जब उन्हें यह पता लगता है कि मृत बनिए की एक स्त्री अयोध्या के सेठ की कन्या गर्भवती है तब वे कहते हैं कि वह गर्भस्थ बालक अपने पिता के धन का मालिक है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राजा दुष्यंत संगीत और चित्रकला के अनुपम उपासक हैं। पंचम अंक के आरंभ में वे रानी हंस पदिका के मधुर स्वर संयोग को सुनकर विदूषक से भूरी भूरी उसकी प्रशंसा करते हैं। उनके चित्र निर्माण कला का निर्देशन षष्ठ अंक में है। उन्होंने शकुंतला का चित्र स्वयं बनाया था जिसकी चित्रकारी पर विदूषक तथा सानुमती अप्सरा दोनों मुग्ध हैं। संस्कृत: अहो एषा राजर्षि निपुणता जाने सख्यग्रतो में वर्तते। हिंदी: राजा दुष्यंत अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करते। जब वे दुर्जय दानवों को पराजित कर तथा इंद्र से संस्कृत हो लौटते समय मातली मार्ग में उनकी तारीफ करता है, तब वे कहते हैं कि जो कुछ मैंने किया उसका श्रेय मुझको मत दीजिए, वह सब देवराज इंद्र के प्रभाव का फल है। दुष्यंत लंपट नायक नहीं है। यदि वे लंपट होते तो पंचम अंक में आत्मसमर्पण करने के निमित्त स्वयं उपस्थित शकुंतला को राजमहल में दाखिल कर लेते, किंतु उनकी मनोवृत्ति यह है कि पर स्त्री को ध्यान से देखना उचित नहीं है। संस्कृत: अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम अनार्यः परदार व्यवहारः। हिंदी: इस अवसर पर उनकी दृढ़ता उनसे नैतिक चरित्र को बहुत ऊंचा उठा देती है। जब गौतमी राजा को याद दिलाने के लिए शकुंतला का अवगुंठन घटाती है तब उसका सौंदर्य देखकर राजा चकित हो जाता है, तो भी अधर्म के भय से वह उसे स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं होता। उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। जब ये शिकार खेलते हुए कुलपति कर्ण से तपोवन के पास पहुंचते हैं तो झट समझ जाते हैं कि यह तपोवन का भूभाग है। भय से भागते हुए मृग का वर्णन तथा तपोवन से अभोग का वर्णन आदि इनकी सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक हैं। इस प्रकार दुष्यंत प्रजा संरक्षण में सदा सन्नद्ध रहने वाला अपने समय का एक अप्रतिम धनुर्धर, धार्मिक, तेजस्वी एवं महाप्रतापी राजा है। श्लोक: का कथा बाल संधाने ज्या शब्देन दूरतः हुंकारेण धनुषः सहि विज्ञानो पोहति। हिंदी: वसुता कविता कामिनी के विलास कविवर कालिदास ने अपने इस धीरोदात्त नायक राजा दुष्यंत को बहुत सोच विचार कर प्रस्तुत किया है। इनको सफल शासक के सभी गुणों से अलंकृत किया है। ये कर्तव्यनिष्ठ, प्रजावत्सल, निर्लोभी, निर्भय, सहृदय, पराक्रमी, विनीत एवं आत्मप्रशंसा से रहित परमोत्साही व्यक्ति के रूप में अंकित किए गए हैं। इनकी जितनी महिमा गा जाए वह थोड़ी ही है। हेडिंग: शकुंतला। निसर्ग सुंदरी शकुंतला अभिज्ञान शकुंतल नाटक की मुग्धा नायिका है और कुलपति कर्ण की पालिता पुत्री है। इसकी माता मेनका अप्सरा तथा पिता राजर्षि विश्वामित्र हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार है। एक बार विश्वामित्र मुनि तप में रम रहे थे। उनके उग्र तप से इंद्र घबरा उठे। उन्होंने अपनी तपस्या को भंग करने के लिए देव सुंदरी मेनका अप्सरा को भेजा। एक तो मेनका का त्रिलोक विलक्षण सौंदर्य पर्याप्त था, दूसरी ओर बसंत का आविर्भाव और मादक बन गया। मेनका के अनुपम हाव भाव, नृत्य गीत, चाल ढाल आदि से संबंधित बसंत के झोंके से विश्वामित्र जी अपने को बचा न सके। उसे देखते ही वे मुग्ध हो गए तथा उनका मन विचलित हो उठा। तप की गाढ़ी कमाई धूल में मिल गई। परिणामतः मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। मेनका उसे वहीं छोड़कर स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र आंख मूंद कर पुनः तपस्या में लीन हो गए। किंतु दयालु शकुंत अर्थात पक्षियों ने उस नवजात शिशु का पालन पोषण करना प्रारंभ किया। मालिनी नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए महर्षि कर्ण की उस पर दृष्टि पड़ी। उसे वे आश्रम में लाए और लालन पालन करने लगे। इस प्रकार शकुंतला विश्वामित्र मेनका की कन्या तथा महर्षि कर्ण की पोष्य पुत्री है। शकुंतला कुलपति कर्ण के पावन आश्रम में पलती और बढ़ती है। आश्रम का वातावरण शांत है। अवस्था के साथ साथ शकुंतला का शारीरिक सौंदर्य भी निखर जाता है। वह शैशव एवं किशोरावस्था को पार कर प्रौढ़ा हो गई है तथा उसका अनुपम सौंदर्य बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। एक दिन हस्तिनापुर का चक्रवर्ती राजा दुष्यंत शिकारी खेलते खेलते कर्ण के तपोवन में जा पहुंचते हैं, जहां वह अनुपम सुंदरी एवं सुकुमारी शकुंतला को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। समान रूप और अवस्था वाली दो सखियों के साथ छोटे बड़े से वृक्षों को सींचते हुए देखकर राजा अपने मन में सोचते हैं कि आश्रम के कार्यों में इसे लगाना ऋषि की विवेकहीनता है। श्लोक: इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया समीलता छेतु विरवस्यति। अंक एक, श्लोक 18। हिंदी: वस्तुतः शकुंतला का शरीर सुकुमारलता की भांति कोमल है। उसका अधर किसलय के समान लाल है। उसकी बाहें लता शाखा के तुल्य मृदु हैं और उसके शरीर पर लुभावना यौवन प्रस्फुटित हो गया है, जिसका संकेत हंसाती हुई प्रेमदा उस समय करती है जब शकुंतला अनुसुईया से कहती है कि सखी, प्रेमदा के द्वारा कसकर बांधी हुई मेरी चोली को जरा ढीली कर दो। तब प्रेमदा उपलाम्भ पूर्वक कहती है, इसके लिए तुम अपने स्तनों को विशाल बनाने वाली युवावस्था को उलाहना दो, मुझे क्यों दोषी बना रही हो। संस्कृत: अत्र पयोधर विस्तार यित्रु आत्मनो यौवन उपालंभस्व माम किमुपाल भसे। हिंदी: इससे प्रतीत होता है कि उसके अवयव व्यक्त हो गए हैं, संभवतः वह श्याम वर्ण की है। तृतीय अंक में राजा कहता है, हे सुंदरी, तुम्हारे श्याम वर्ण के सुंदर हाथ में सौंदर्य पाने के लिए चंद्रमा मृणाल रूप से विद्यमान प्रतीत होता है। संस्कृत: अयम सते श्याम लता मनोहरम। हिंदी: वह स्त्री रूप से विधाता की विलक्षण सृष्टि है। संस्कृत: स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रति प्रीति भाति सामे। हिंदी: उसका रूप न सूंघा गया प्रसून है, नक्षत्र विहीन कोमल किस्ल हैं, नवविधा हुआ रत्न है, अनास्वादित अभिनव मधु हैं और अखंडित पुण्यों का फल है। इसी से दुष्यंत जैसा चक्रवर्ती राजा कर्णाश्रम की ललाम भूता शकुंतला का दर्शन नेत्र का फल मानता है, उसे ही भूमंडल की दर्शनीय वस्तु समझता है और विदूषक से स्पष्ट कहता है, संस्कृत, माधव्य अनवाप्त चक्षु फलो अशी येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। हिंदी, शकुंतला का पालन पोषण तपस्वियों के बीच में हुआ, अतः उसका जीवन तापस कन्या जैसा ही है। वह वत्कल पहनती है और श्रृंगार चेष्टाओं से अनभिज्ञ है। द्वितीय अंक में शकुंतला पर दुष्यंत के रूप सौंदर्य पर ऋषिकर विदूषक से कहता है कि ब्रह्मांड सर्वप्रथम इसकी मूर्ति का चित्त में रूपायित किया होगा, बिना मन के सक्रिय सहयोग से इस प्रकार का अद्वितीय स्त्री रत्न उत्पन्न हो ही नहीं सकता। श्लोक, चित्ते निवेश परिकल्पित सत्व योगात रूपोच्चयन विधिना मनसा कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्व मनुचिंत्य वपुष्य तस्या। अंक 2, श्लोक 9, हिंदी, प्रथम अंक में शकुंतला की रूप लक्ष्मी से चमत्कृत होकर दुष्यंत कहता है कि मानवी स्त्रियों में भला ऐसा रूप कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, चंचल चमक वाली बिजली पृथ्वी तल से थोड़े ही निकल सकती है। श्लोक, मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात। अंक 1, श्लोक 25, हिंदी, तपोवन में रहते रहते शकुंतला का प्रकृति से घनिष्ठतम संबंध हो गया है। वह आश्रम के वृक्ष लता एवं पशु पक्षियों को भी अपने सगी संबंधी समझती है और स्पष्ट कहती है, संस्कृत, न केवलम तात नियोग एव अस्ति मे एतेषु सोदर स्नेह। हिंदी, उसके हृदय में तपोवन के जड़ चेतन सभी पदार्थों के लिए सहानुभूति हैं। वह पहले आश्रम के पौधों को जल से सींच लेती है, तब स्वयं जल पीती है। यद्यपि उसे मंडन अतिप्रिय है, तथापि वह वृक्षों को कष्ट धोने के भय से उनके पल्लव पुष्प आदि नहीं तोड़ती। श्लोक, पातुम न प्रथमं व्यवसेति जलम युष्मा स्वत्पीतेषु या ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहन या पल्लवम। अंक 4, श्लोक 8, यदि चरते समय आश्रम के मृगों के मुख कुश से कट जाते थे तो उन्हें इंगुदी का तेल लगाकर उनके घावों को अच्छा करती थी। चतुर्थ अंक में आश्रम से विदा होने के समय वह सखियों के समान आश्रमस्त लता वृक्ष और मृगों से भी मिलती है। प्रकृति प्रेम की उपासिका शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्ष एवं वन देवताओं ने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण दिए थे। वृक्षों ने पक्षियों के द्वारा स्वागत गान किए और लताओं ने अपने पुष्पों को बिखोरते हुए अभिनंदन किया। अनंतर शकुंतला के जाते समय सारा तपोवन स्तब्ध सा हो गया। शकुंतला में शालीनता कूट कूट कर भरी है। वह सुशील तथा लज्जाशील नायिका है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत को देखकर उसके मन में काम विकार उत्पन्न होता है, परंतु वह अपनी काम वेदना किसी से नहीं करता, अपनी सखियों से भी छिपाती है। उसके काम जनित हाव भाव बड़े ही मर्यादित ढंग से होते हैं। जब उसकी काम पीड़ा अति उग्र हो गई तब सखियां व्यग्र हुई। उन्होंने बार बार उस वेदना का कारण जानकर प्रतिकार करने का आग्रह किया। तब कहीं शकुंतला ने अपनी जबान खोली, संस्कृत, सखी, यत प्रभृति तपोवन रक्षिता स राजर्षि मम दर्शन पथमागतः। हिंदी, तपोवन के रक्षक वे राजर्षि जब से मेरी दृष्टि के विषय बने, बस इतना कहकर लज्जा के मारे चुप हो जाती है। प्रथम अंक में जब राजा उसके रूप की सराहना करते हैं तब वह लज्जा से सिर झुका लेती है। आगे जब प्रियंवदा उसके विवाह की चर्चा चलाती है तब वह वहां से हट जाना चाहती है। तृतीय अंक में मालिनी नदी के पास एकांत स्थान लता मंडप में राजा उसका अंचल पकड़ना चाहता है, तब वह कहती है, पौरव, चंचलता न कीजिए, अपने विनय की रक्षा कीजिए, काम पीड़ित होने पर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। संस्कृत, पौरव, रक्ष रक्ष विनयम काम पीड़िता अपि न खलवत मनः प्रभवामी। हिंदी, राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाने के अनंतर वह गर्भवती हो जाती है। राजा हसिनापुर जा चुके हैं, कुलपति कर्ण सोमतीर्थ से वापस आ गए हैं। उनसे कैसे कहा जाए कि शकुंतला के सामने एक समस्या उपस्थित थी, किंतु अग्निशाला में आकाशवाणी ने इस समस्या का समाधान शकुंतला के सामने प्रस्तुत कर दिया। शकुंतला का हृदय मनुष्यों से ही नहीं आश्रमस्थ लता पादप और पशु पक्षियों से प्रेम सूत्र में निबद्ध है। वह सचमुच प्रकृति कन्या तथा निसर्ग सुंदरी है। ऐसी द्रवणशील हृदय वाली नारी कठिनाई से मिलती है। वन की लताओं, वृक्षों, कुसुमों, पशुओं और पक्षियों सभी से उसका आत्मीयता है। वह उनकी भाषा समझती है और वे भी उसकी भाषा समझते हैं। वह उनकी परिचर्या करती हुई और उसकी मंगल कामना करते हैं। उसकी विदाई के अवसर पर हरिणियों ने मुख में चलते हुए कुशा के कौर उगल दिए। मोरों ने नाचना बंद कर दिया। लताओं ने अपने पीले पत्तों के रूप में आंसू गिराना आरंभ कर दिया। शकुंतला सबसे मिलती है और सबसे विदा लेती है। अपनी बहन वन ज्योत्सना की भुजाओं से लिपटती है, पुत्र के समान पालित मृग को जो मार्ग रोककर खड़ा जाता है समझा बुझा कर लौटाती है। गर्भ मंथरा मृग वधु के लिए पिताजी से निवेदन करती है कि जब इसे बच्चा हो जाए तब यह प्रिय संदेश मेरे पास भिजवा दीजिएगा। शकुंतला पतिव्रता पत्नी है, अपने पति को अत्यंत प्रेम करती है। गांधर्व विधि से विवाह हो जाने पर राजा दुष्यंत के प्रति उसका प्रेम और बढ़ जाता है। राजा के हस्तिनापुर चले जाने पर उसका मन उन्हीं के में निरंतर लगा रहता है। उनकी तन्मयता में वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। सुलभ कोप महर्षि दुर्वासा के आने और भिक्षा न पाकर क्रोध से शाप देकर चले जाने का उसको कुछ भी पता नहीं है। वत्सल पिता महर्षि कर्ण के आदेश से हस्तिनापुर जाते समय उसके मन में एक प्रकार का उत्साह दिखाई पड़ता है। वहां जब राजा शापवश न पहचाने कारण उसका परित्याग कर देते हैं तब कुछ क्षणों के लिए क्रोध हो जाती है, किंतु उसका क्रोध अधिक काल तक नहीं रहता। वह दुष्यंत को दोष न देकर अपने भाग्य को ही कोसती है। संस्कृत। नूनम में सुचरित प्रतिबंधकम पुराकृतम तेषु दिवसेषु परिणाम मुखमासीत। हिंदी। महर्षि कश्यप के आश्रम में वह विरहिणी के वेश में रहती है। पति देव को हृदय में रखकर अपने चरित्र की रक्षा करते हुए वह समय बिताती है। श्लोक। वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षा ममुखी धृते कवेणि अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम विरहव्रतम विभर्तिम। अंक 7 श्लोक 21। इस नाटक के सप्तम अंक का उत्तरार्ध शकुंतला के सुचरित से भरा हुआ है। उसकी तपस्या का ही परिणाम है कि उसका पति उससे मिलता है, पैरों पड़ता है, क्षमा मांगता है और अनुपम सुख भोग के निमित्त पुत्र सहित उसे सादर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आता है। शकुंतला का स्वभाव बड़ा ही सरल है। जब उसकी सखियां उसका मजाक उड़ाती हैं तो वह केवल कहकर इतना ही चुप हो जाती है कि यह तुम्हारे मन बात है। संस्कृत। एषते आत्मनश्चित्तगतो मनोरथः। हिंदी। उसकी सखियां उसे आज्ञा देती हैं कि वह अपने को कुलपति कन्या होने का घमंड नहीं करती। जब राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं तब प्रेमवदा कहती है, सखी शकुंतले जाओ कुटिया से फलयुक्त अर्धपात्र लाओ और यह घड़े का जल पैर धोने के लिए काम में आएगा। संस्कृत। हला शकुंतले गच्छो उटज फल मिश्रमर्ध्य भाजन मुपहर इदमपि पादोदकम भविष्यति। हिंदी। चतुर्थ अंक में विदायक समय उसकी सखियां उससे कहती हैं, यदि राजा तुम्हें न पहचाने तो उसको अंगूठी दिखा देना। संस्कृत। सखी। यदि नाम स राजर्षि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवे तद्दा अस्य दमात्मनो नाम धेया अंकित मंगुलियकम दर्शयिष्यसि। हिंदी। यह सुनकर शकुंतला का हृदय कांप उठता है। उस समय सखियां कहती हैं, संस्कृत। सखी। माँ विभेहि स्नेह पापा मा शंकते। हिंदी। सखियों का इतना कहना ही उसकी घबराहट से दूर करने के लिए पर्याप्त है। उसने उस पर पुनः कोई प्रश्न नहीं किया। शकुंतला काव्य कला में भी निपुण है। प्रणय पत्रिका में लिखने के निमित्त वह स्वयं पद्य बनाती है। शकुंतला के मन में पूजनीय गुरुजनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। वह जानती है कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम करने पर गुरुजनों का अनादर होता है। तृतीय अंक में लता मंडप के अंदर जब राजा उससे कहता है कि बताओ इस समय तुम्हारी क्या सेवा करूं, नलिनी दल से पंखा करूं या पैर दबाऊं, इस पर शकुंतला कहती है, मैं आप जैसे माननीय पुरुष के निकट अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। संस्कृत। न माननीयेषु जनेषु आत्मान मपराधम दिश्यामि। हिंदी। अपने धर्म पिता महर्षि कर्णों के प्रतिवेश आदर एवं प्रेम करती है। चतुर्थ अंक में तपोवन से हस्तिनापुर को प्रस्थान करते समय वह कर्ण के चरणों पर गिर पड़ती है। उसे उन्हें छोड़कर आगे जाते नहीं बनता पर जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो यह कहकर कर्ण जी उसे भेजते हैं। जब शारंगराव आदि उसे दुष्यंत के दरबार में छोड़कर जाने लगते हैं तब वह भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाती है। पर क्या शारंगराव घूमकर डांटते हुए उसे कहता है कि अई दुष्कारणी यह क्या तू स्वतंत्रता का आलम्बन करना चाहती है। आपूर्वभागे। संस्कृत। आपूर्वभागे किमिदम स्वातंत्र्यमवलंबसे। हिंदी। इस पर वह डर के मारे कांपने लगती है, आगे नहीं बढ़ती। सप्तम अंक में दुष्यंत से पुनः मिलने पर वह उनके साथ महर्षि कश्यप और अदिति के सामने जाने में लग जाती है। जब दुष्यंत कहते हैं कि प्रिय बच्चों को संभालो तुम्हें आगे कर मैं देवपिता का दर्शन करना चाहता हूँ, तब शकुंतला कहती है, आर्य पुत्र के साथ गुरुजन के समीप जाने मुझे शर्म मालूम पड़ती है। संस्कृत। लज्जे खलु आर्य पुत्रेण सार्धम गुरुजन समीपम गंतुम। हिंदी। कालिदास ने उपेक्षिता कलंकिता शकुंतला को कर्ण के आश्रम में न भेजकर गहरी काव्यात्मकता सहृदय का परिचय दिया है। वह अब पहले जैसी नहीं थी, विश्व के साथ उसका संबंध बदल गया था। इस प्रकार शकुंतला का चरित्र न केवल संस्कृत जगत में ही आदर्श माना जाता है अपितु विश्व साहित्य में आदर्श के रूप में देखा जाता है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुत्कंठ से की है। मधुर भाषणी कोकिल कंठी शकुंतला ने यदि अभिनव यौवन की उमंग में राजा दुष्यंत के साथ गांधर्व विधि से विवाह न किया तो कोई विचारवान व्यक्ति उनके चारित्रिक दुर्बलता पर उंगली नहीं उठा सकता। धन्य है वह दुर्जय मदन लीला जो देव दानव ऋषि ज्ञानवान मानव और पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी व्यग्र बना देती है। हेडिंग कर्णव ऋषि। महर्षि कर्ण आश्रम के कुलपति हैं। कुलपति उसे कहते हैं जो प्रतिदिन 10,000 विद्यार्थियों को अपने आश्रम में रखकर पढ़ाता है और उनके भरण पोषण एवं रहने का प्रबंध करता है। श्लोक मुनि नाम दश सहस्त्रम यो अन्ना दानादि पोषणात् अध्यापापयति विप्रशिरशो कुलपति स्मृतः। हिंदी उसका दूसरा नाम काश्यप भी है क्योंकि वे महर्षि मरचिनंदन कश्यप के पुत्र हैं। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनका पुनीत आश्रम मालिनी नदी के तट पर तथा यज्ञशाला से अलंकृत है। वे श्रोत्र विधि से प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले महर्षि हैं। उन्हें शकुंतला को राजा दुष्यंत द्वारा गांधर्व विवाह के बाद गर्भवती होने का समाचार सर्वप्रथम अग्निशाला में आकाशवाणी बतलाती है। वे अपने अनुपम तपोबल से त्रिकाल का रहस्य हस्ताम कलवत जान लेते हैं। वे स्नान संध्या कर्मानुष्ठान में निरत धार्मिक भावना से ओतप्रोत उदार हृदय वाले एवं तेजस्वी ब्राह्मण हैं। उनके तपोबल का प्रभाव चतुर्थ अंक में शकुंतला के विदायक समय देखते बनता है जिनसे प्रभावित होकर वृक्ष एवं वन देवताओं ने विविध प्रकार के दिव्य वस्त्र आभूषण आदि प्रस्तुत किए हैं। शकुंतला महर्षि कर्ण की पोष्य पुत्री है। वे जननी जनक विहीन शकुंतला का अपनी औरस पुत्री के समान लालन पालन करते हैं। शकुंतला के प्रतिकूल देव को शांत करने के निमित्त वे सोमतीर्थ की यात्रा करते हैं। वे शकुंतला की शालीनता से अत्यंत संतुष्ट हैं। अपनी अनुपस्थिति में वे अतिथि सत्कार का भार व्यवहार कुशल शकुंतला को सौंपते हैं। शकुंतला के पतिगृह गमन के समय उनकी सारी ममता उमड़ पड़ती है। सगे पिता के समान शोक उन्हें व्याकुल कर देता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका गला रूंधने लगता है। दृष्टि जड़ हो जाती है। हृदय घबराने लगता है। तपस्वी होने पर भी वे अपने दुख के वेग को रोक नहीं पाते। वे अपने मन में विचार करते हैं जब मेरे सदृश अरण्यवासी मनुष्य की कन्या के प्रेम से ऐसी दशा हो जाती है तो सांसारिक जनों की क्या दशा होती होगी। संस्कृत वत्से मामेव जड़ी करोषि अपयास्यति मे शोकः कथम नु वत्से वत्से किमेव कातराशि वत्से एहि पश्वजस्व माम सखी जनम च वत्से त्वमिदानी मनुषाशनीयासि वत्से अलम रुतिदेन स्थिरा भववत्से नेदम विस्मरिष्यामि अनुसूये प्रियं वदे गतावाम सहचरी। हिंदी इत्यादि महर्षि कर्ण की उक्तियां वात्सल्य से भरी हुई हैं। वस्तुतः शकुंतला के प्रति उनका वात्सल्य निस्वार्थ आदर्श तथा अनुकरणीय तथा स्पृहणीय है। कर्णों का तपोबल अपार है जिससे प्रभावित होकर राजा दुष्यंत तृतीय अध्याय अंक में कहते हैं संस्कृत जाने तपसो वीरयम। हिंदी महर्षि कर्णों की उपस्थिति में राक्षस उनके तपोवन के पास नहीं पहुंच पाते। उनके अनुपस्थिति में ही वे उपद्रव मचाते हैं। तपोबल के प्रभाव से उन्हें त्रिकाल की बातें ज्ञात हो जाती हैं। सप्तम अंक में जब दुष्यंत से शकुंतला के मिलन का समाचार शिष्य द्वारा सुना देने के लिए अदिति महर्षि कश्यप से कहती है तब वे कहते हैं कि तपस्या के प्रभाव के से कर्ण को शकुंतला के दुष्यंत से पुनर्मिलन का वृत्तांत अवगत हो गया है। संस्कृत तपः प्रभावात् प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवतः कर्णवस्य। हिंदी चतुर्थ अंक में महर्षि कर्ण के तपोबल का प्रभाव अद्भुत एवं आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। शकुंतला की विदाई के समय वृक्षों ने मांगलिक वस्त्र एवं चरण रंजन के लिए महावर दिए। वन देवियों ने आभूषण दिए तथा प्यारी सखियों ने उसे पहनाकर चित्र के समान शकुंतला को अलंकृत किया। हेडिंग मुनि त्रय। शकुंतल में तीन ऋषि अंकित हैं और तीनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। एक तो महर्षि दुर्वासा है जिनको थोड़े में ही क्रोध आ जाता है और दारुण शाप दे बैठते हैं। इन्हीं के शाप के परिणाम स्वरूप शकुंतला को कुछ दिनों तक दुख भोगना पड़ता था। दूसरे महर्षि हैं कुलपति कर्ण। ये दुर्वासा की ही तरह हैं तपोनिष्ठ महाप्रभावशाली और अंतर्यामी हैं किंतु कर्ण और दुर्वासा में अत्यंत वैषम्य है। दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधी हैं तो कुलपति कर्ण अति शांत। वे निष्ठुर हैं तो ये कोमल हृदय और अत्यंत दयालु। इन्हें शकुंतला अकस्मात वन में माता पिता से परित्यक्त मिली तो उन्होंने दया से अपनी पुत्री के समान पालन पोषण किया विविध प्रकार से शिक्षित किया उसके प्रतिकूल देव को शांत करने के लिए सोमतीर्थ की यात्रा की। शकुंतला मानो कुलपति का प्राण है। संस्कृत सा कुलपते रुच्छ वसितमीव। हिंदी उनकी अनुपस्थिति में उसने राजा दुष्यंत के साथ अपना गांधर्व विवाह कर लिया। इससे वे नाराज नहीं हुए प्रत्युत उन्होंने उसका समर्थन करके उसको तत्काल पतिगृह भेज दिया। और उन्होंने अपना आशय इस प्रकार व्यक्त किया। संस्कृत: दृष्टया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहुति पतिता। हिंदी: तीसरे ऋषि हैं महर्षि नंदन कश्यप, उनके आश्रम में सब स्वर्गीय सुख साधन है, परंतु उसमें आसक्त न होकर वे तपस्या करते रहते हैं। वे इंद्र आदि देवताओं के पिता हैं। भगवान विष्णु वामनावतार में उनके पुत्र हुए थे। वे आप्तकाम हैं, फिर भी लोक कल्याण के निमित्त तपश्चर्या में लग्न रहते हैं। इनके पुनीत आश्रम में दुष्यंत द्वारा परितक्तता शकुंतला को आश्रय मिला। इनके पातिव्रत धर्म के उपदेश से वे मानसिक शांति मिली। जब उसे पुत्र पैदा हुआ तब उन्होंने उस बालक के जात कर्मादि संस्कार किए। इन्हीं के आश्रम का पर पुत्र सहित शकुंतला पुनः पति से मिलकर सुखी हुई। ऐसे ज्ञान निष्ठ लोकहितैषी एवं सर्वसामान्य महात्मा के आशीर्वाद के द्वारा इस नाटक की समाप्ति करने में कवि ने अत्यंत औचित्य प्रदर्शित किया है। तपस्वी होते हुए भी महर्षि कर्ण बड़े व्यावहारिक हैं, उनका हृदय सहानुभूतिपूर्ण है। जब उन्हें आकाशवाणी द्वारा राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला के संबंध का पता चलता है तब वे धर्मतः विचार कर अपनी अनुमति दे देते हैं। उनके मत में क्षत्रियों के लिए गांधर विवाह उत्तम प्रकार का विवाह है। वे शकुंतला को विदा करते समय राजा दुष्यंत को जो संदेश भेजते हैं वे सरल एवं स्वाभाविक सार गर्भित एवं ध्यान देने योग्य हैं। वे अपनी कन्या शकुंतला के लिए राजा की अन्य पत्नियों के समान पद चाहते हैं। उनके शकुंतला अन्य सब पदार्थों भाग के अधीन है। शकुंतला के लिए दिया गया उपदेश तो स्वर्णाक्षरों में अंकित करने लायक है। उसका मूल्य निर्धन महिला से लेकर महारानी तक के लिए समान है। उस आदर्श उपदेश में भारतीयता भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वे विरक्ती हुई शकुंतला को गृहिणी के कर्तव्य का उपदेश देते हैं कि ससुर गृह में जो लोग बड़े हों उनकी यथाविधि सेवा करना, सौतों के साथ सहेलियों जैसा व्यवहार करना, कभी किसी कारणवश पति अपमान करे तो उसे झगड़ना मत, सेवकों के साथ उदारता का व्यवहार करना और संपत्ति के समय भोगों में आसक्त होकर अहंकार नहीं करना। इस प्रकार का व्यवहार करने वाली कुलवधुएं अनायास ही गृहिणी पद प्राप्त कर लेती हैं तथा प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियां कुल के दुख का कारण बनती हैं। शकुंतला अपने साथ सखियों से चलने का आग्रह करती हैं, पर महर्षि कर्ण अनुसुईया और प्रियंवदा को शकुंतला के साथ नहीं भेजते क्योंकि उनका भी विवाह करना है। वे युवती कुमारी कन्याओं को विवाहता कन्या के साथ उसके ससुराल भेजना उचित नहीं समझते क्योंकि यह भारतीय परंपरा एवं मर्यादा के प्रतिकूल अव्यवहारिक कार्य है। संस्कृत: वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्त मनोयोस्तत्र गन्तुम त्वया सह गौतमी यास्यति। हिंदी: यह कहकर बड़ी बुद्धिमानी से शकुंतला के आग्रह को टाल देते हैं। वे कन्या को धरोहर समझते हैं और उसके भार का संभलना वे बड़ी सतर्कता तथा योग्यता का काम मानते हैं। कर्णजी शकुंतला को अपने पति के घर भेजकर अपनी अंतरात्मा में विषदता का अनुभव करते हैं। श्लोक: अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितं न्यास इवांतरात्मा। अंक चतुर्थ, श्लोक 22। पति के घर जाने को उद्यत शकुंतला जब महर्षि कर्ण के गले में लिपट कर कहती है कि पिताजी, आपकी गोद से बिछड़ी हुई मैं मलय पर्वत से उखाड़े हुई चंदन लता की भांति दूसरे देश में कैसे जीवन को धारण कर सकूंगी, तब कर्ण जी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी व्यग्रता को दूर करते हुए समझाते हैं, बेटी तुम अतिकुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित होकर उसके ऐश्वर्य कार्यों में हमेशा व्यस्त रहोगी और शीघ्र ही जिस प्रकार पूर्व दिशा पावन सूर्य को जन्म देती है उसी प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को पैदा कर मेरे विरह जन शोक को भूल जाओगी। अतः घबराओ मत, स्वस्थ चित्त से पति के घर जाओ। कण्व जी के मतानुसार दुख का सबसे उत्तम औषध समय यापन है। कुछ समय बिताने पर दुख अपने आप कम हो जाता है। परिवार के किसी व्यक्ति के परदेश चले जाने पर घर के लोगों को अपना घर सुना कर लगने लगता है। इसका कारण प्रेम होता है। कुछ दिनों के बाद विरह भूल जाता है और मन धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। इस रहस्य से कण्व खूब परिचित है। शकुंतला के चले जाने के बाद प्रियंवदा और अनुसुईया महर्षि कर्ण से कहती हैं कि तात, हम लोग शकुंतला से शून्य इस तपोवन में कैसे प्रवेश करें। संस्कृत: तात, शकुंतला विरहितम शून्यमीव तपोवनम कथम प्रविशावह। हिंदी: इस पर महर्षि कर्ण कहते हैं कि प्रेम के कारण ऐसा अनुभव हो रहा है, चलो कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार महर्षि कर्ण का विशुद्ध जीवन गंगा के प्रवाह के समान परम पवित्र है, हिमालय की भांति उज्ज्वल है, समुद्र के समान गंभीर तथा त्रिवेणी की तरह तरल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही है। कर्ण की शिक्षा में भारतीय धर्म की मर्यादा बोल उठी है। कवि की वर्णाश्रम धर्म के प्रति आस्था तथा कौटुंबिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का सुंदर प्रतिपादन इस प्रसंग में संपन्न हुआ है। संपूर्ण अंक में स्नेह और सौहार्द की जो पवित्र मंदाकिनी प्रवाहित हुई है उससे वस्तुतः हमारी संस्कृति के सनातन उपदेश प्रतिध्वनित होते हैं। हेडिंग विदूषक। अभिज्ञान शाकुंतल के विदूषक का नाम माधव्य है। विदूषक हास्य रस का पात्र है। वह वेश वाणी के द्वारा राजा का मनोविनोद करता है। यह जाति का बकवादी ब्राह्मण है और खूब खब्बू है, क्योंकि बीच बीच में इसे लड्डू खाने की याद आती रहती है। यह हाथ में हमेशा टेढ़ा ठंडा रिये रहता है। यह स्वभाव से डरपोक है। राक्षसों के भय से यह शकुंतला को देखने के लिए नहीं जाता। यह उम्र में राजा से छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि यह अपने को राजा का अनुज तथा युवराज कहता है। जिस समय राजा दुष्यंत माताओं के उपवास व्रत का संदेश सुनकर पुत्र कृत्य संपादन के लिए विदूषक को राजधानी भेजते हुए कहते हैं कि मित्र, मेरी माँ तुझे भी पुत्र की तरह मानती हैं, अतः तुम जाकर माँ के पुत्र के कार्य का संपादन करो, मैं तपोवन की रक्षा कार्य में लगा हूँ। उस समय विदूषक कहता है कि तब तो जिस प्रकार राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए उस प्रकार मैं जाऊँगा। संस्कृत। यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि तेन ही युवराजो अस्मादिदानीं संवृत्तः। संस्कृत हिंदी। विदूषक राजा का अंतरंग मित्र होता है, अतः राजा उसे रहस्य की गुप्त बातें भी बताते रहते हैं। अतः द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग को एकमात्र विदूषक से ही कहते हैं। यह परिवार का विश्वसनीय व्यक्ति है। पंचम अंक में रानी हंस पदिका को समझाने के लिए राजा इसी को भेजते हैं। यद्यपि प्रेम के सभी कार्यों में यह राजा का अंतर सहायक है, फिर भी राजा इसे चपल ही समझते हैं। वे इसे राजधानी भेजते समय मन में विचारते हैं कि यह ब्राह्मण बालक बड़ा चंचल है, कहीं शकुंतला विषयक मेरे अनुराग को अंतपुर की स्त्रियों से कह न दे, अतः अब मैं इस प्रकार कहता हूँ। विदूषक का हाथ पकड़कर कहते हैं, मित्र, ऋषियों के गौरव कारण मैं आश्रम से जा रहा हूँ। वस्तुतः तापस करना शकुंतला पर मेरी आसक्ति नहीं है। संस्कृत। वयस्य ऋषि गौरवादाश्रमं गच्छामि न खलु सत्यमेव तापस कन्याकायां ममाभिलाषः। श्लोक। क्व वयं क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावः सममेधितो जनः परिहास जलपितं सखे परमार्थेन गृहीतां वचः। अंक 2 श्लोक 18। मित्र, देखो भोग विलास में आसक्त कहां हम लोग तथा कहां मृग के बच्चों के साथ पली हुई काम वासना से विरत मुनि कन्या शकुंतला। इसलिए हंसी में कही गई इस बात को तुम सही मत समझना। राजा की कही हुई इस बात को माधव्य सच्चा समझकर अपने मुख में ताला लगा लेता है। विदूषक राजा का मुंह लगा व्यक्ति है। यह समय समय पर उससे खूब हंसी करता है। कभी कभी राजा की कमजोरी का लाभ उठाकर यह उसे बेवकूफ भी बनाता है। जैसे षष्ठ अंक में चित्रपट पर अंकित शकुंतला के चित्र को देखते समय यह भौरों की बात इस प्रकार उठाता है कि राजा उसे सच्चा भौरा समझकर बहुत कुछ कह जाते हैं। अंत यह उसे याद दिलाता है कि यह तो चित्र का भौरा है। संस्कृत। भोग चित्रम खलु एतत। हिंदी। राजा के साथ माधव्य की मैत्री का अन्य लोग भी लाभ उठा लेते हैं। वे जानते हैं कि राजा के सामने भेद नहीं खोलेगा। द्वितीय अंक में राजा के साथ मृग्या संबंधी बातें करने के पूर्व सेनापति इसे अपनी तरफ मिला लेता है। वह समझता है कि राजा इसका कहना नहीं टालेगा। वस्तुतः हुआ भी वही। विदूषक ने अपने विकृत अंग भंग का प्रदर्शन कर मृग्या से विश्राम ले ही लिया। विदूषक को बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह जिसे जो चाहे कह सकता है। हंसी में कही हुई इसकी बातों में कोई बुरा नहीं मानता। यह सेनापति को कहता है। संस्कृत। त्वं तावत् दास्यः पुत्रः जीर्णरिक्षस्य मुखो निपतितो भविष्यसि। हिंदी। तू दासी का बेटा एक वन से दूसरे वन में घूमता हुआ मनुष्य के नाक के लालची किसी बूढ़े भालू के मुंह में पड़ जाएगा। यह राजा को भी एक वचन से ही संबोधित करता है। यह ऊपर से तो बेवकूफ मालूम पड़ता है, किंतु अंदर से अत्यंत चतुर है। जब द्वितीय अंक में इससे एकांत में बातें करने के अभिप्राय से राजा रेवतक आदि सेवकों को अपने कार्यों पर भेज देते हैं, तब यह उनका आशय ताड़ जाता है और कहता है, आपने तो इस समय इस स्थान को मक्षिका से शून्य कर दिया। संस्कृत। कृतम भवता सांप्रतम निर्मक्षिकम। हिंदी। यह अपने वचनों के द्वारा राजा का मनोविनोद करता रहता है। द्वितीय अंक में जब शकुंतला को लक्ष्य कर राजा कहता है कि मित्र, तू नेत्र फल से वंचित है, क्योंकि तूने देखने योग्य वस्तु नहीं देखी। संस्कृत। अनवाप्त चक्षु फलो असि येन त्वया दर्शनीयम् न दृष्टम्। हिंदी। इस पर वह कहता है, अजी आप तो मेरे सामने ही हैं। संस्कृत। ननु भवान ग्रतो में वर्तते। हिंदी। पुनः आगे राजा शकुंतला की चर्चा करता है। तब वह हंस कर कहता है कि जैसे पिंड खजूर से उबे हुए व्यक्ति को इमली खाने की इच्छा होती है, वैसे ही स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले यह वनचरी शकुंतला विषयक आपकी इच्छा है। संस्कृत। यथा कस्यापि पिंड खजूरेर दूजे तस्य तिंत्रिणया मम्भिलाशो भवेत तथा स्त्रीरत्न परिभोगिणो भवत एयम मर्थ्यर्थना। हिंदी। फिर भी राजा कहता है, वयस्य अभी तुमने उसे देखा नहीं जिससे ऐसा कह रहे हो। मित्र अधिक क्या कहूँ, मुझे तो वह ब्रह्मा की विलक्षणा शिष्ट प्रतीत हो रही है। इस पर वह पुनः कहता है कि यदि वह ऐसी स्त्री रत्न है तो आप इसे शीघ्र बचाइए, कहीं इंगुदी के तेल से चिकने शिरे वाले दढ़ी वाले किसी तपस्वी के हाथ न पड़ जाऊं। संस्कृत। तेन ही लघु परित्रायतामेना भवान मा कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल चिकण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। हिंदी। पुनः विदूषक राजा से पूछता है कि वयस्य आपके प्रति उसका अनुराग कैसा है। तब राजा कहता है, मेरे सामने पढ़ने पर उसने अपनी आंखें हटा ली, दूसरे बातचीत के प्रसंग में हंस दिए, शीत के कारण काम भाव न तो प्रकट किया न छिपाया ही। इस पर विदूषक कहता है, तो क्या देखते ही वह आकर आपकी गोद में बैठ जाती है। संस्कृत। न खलु दृष्ट मात्रस्य तवांगम समारोहति। हिंदी। राजा पुनः कहता है, मित्र सखियों के साथ जाने के समय शकुंतला ने शालीनता के साथ मेरे प्रति प्रेम भाव प्रकट किया, वह कुछ कदम जाकर कुश के अंकुर से मेरे पैर बींध गए हैं, ऐसा कहकर रुक गई और वृक्षों की टहनियों में न फंसे हुए भी वस्त्र को छुपाती हुई मेरी तरफ मुख कर खड़ी हो गई। यह सुनकर अंत में विदूषक कहता है कि तब तो आपने इस तपोवन को क्रीड़ावन ही बना लिया। संस्कृत। तेन ही कृतम त्वयो पवनमिति पश्यामि। हिंदी। इस प्रकार विदूषक केली कलह प्रिय हास्यकारी राजा का सहचर माना गया है और वह अपने वेश अंग और वचनों के द्वारा हास्य करता रहता है। संस्कृत। विकृतांग वचो वैशर हास्य कारो विदूषक। हेडिंग। शारंगरव शारदत्त। शारंगरव तथा शारदत्त ये दोनों महर्षि कर्णों के व्यवहारज्ञ एवं आज्ञाकारी शिष्य हैं। महर्षि इनका विश्वास करते हैं और इनके नाम के आगे सम्मान सूचक मिश्र शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत। क्वानुते सारंगरव शारदत्त मिश्रः। हिंदी। इससे इनकी विद्या अवस्था और व्यवहार कुशलता सिद्ध होती है। ये दोनों करीब 25 वर्ष के प्रौढ़ युवक हैं। इन दोनों में शारदत्ता की अपेक्षा सारंगरव बड़ा प्रतीत होता है और दल का नेता है, क्योंकि कुलपति कर्ण दुष्यंत के लिए उसी से संदेश भेजते हैं। संस्कृत। सारंगरव त्वया मद्वचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। हिंदी। दोनों परस्पर एक दूसरे का आदर करते हैं और दोनों के मन में गुरु भक्ति है। वे दोनों केवल तपस्वी ही नहीं हैं, व्यवहारज्ञ भी हैं। शकुंतला की विदाई के समय आश्रम से कुछ दूर जाकर दोनों महर्षि से कहते हैं कि भगवान, हमने सुना है कि सरोवर तक ही प्रियजनों को पहुंचाया जाना चाहिए, अतः यह सरोवर का तट है। हमको संदेश बताकर यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर आप वापस जा सकते हैं। संस्कृत। भगवान, ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगत स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते। हिंदी। महर्षि कर्ण के दोनों शिष्य राज दरबार के शिष्टाचार को भली भांति जानते हैं। राजा दुष्यंत के समक्ष जाते ही दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। हस्तिनापुर में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला का तिरस्कार करने पर जब शारंगरव राजा दुष्यंत से उत्तेजनापूर्ण बातें कर रहा था, तब शारदत्त उसे शांत करते हुए कहता है, शारंगरव, उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ है, हमने गुरु जी का संदेश कह दिया है, अब हम लोग लौट चलें। संस्कृत। सारंगरव किम उत्तरेण अनुष्ठितो गुरु संदेश प्रतिनिवतार महे वयम। हिंदी। दोनों मिलजुल कर परस्पर परामर्श से काम करते हैं। दोनों को तपोवन से प्रेम तथा नगर से नफरत है। राजमहल में पहुंचकर दोनों एक दूसरे से अपना अपना अनुभव बताते हैं। दोनों के चरित्रों में अंतर भी है। शारंगरव भावना की धारा में बहता है, वह वन से रहने का अभ्यस्त है, उसे एकांत प्रिय लगता है। उसको राजमहल ऐसे लग रहा है जैसे उसमें से आग की लपट निकल रही हो। संस्कृत। जनाकीर्णम मन्ये हुत वह परितम गृहमेव। हिंदी। इसके विपरीत सारदत्त के विचार दार्शनिक हैं, उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति है। शारंगरव दुर्वासा के सदृश अपने तप एवं ब्रह्म तेज के सामने किसी को नहीं समझता। राजा दुष्यंत जिस समय आश्रम में पधारे थे, उस समय गुरुपुत्री शकुंतला की सहमति के कारण शारंगरव शांति बना रहा, किंतु आज कुलपिता ने चोरी करने वाले राजा दुष्यंत को जब वही संपत्ति समर्पित कर दी और वह लेने से इनकार कर रहा है, आज उसे पहचान भी नहीं रहा। गुरुपुत्री लिख बिलख रही है, सब समझा रहे हैं, अभिमानी राजा मान ही नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में शारंगरव ने जो कुछ कहा वह मनोवचित एवं समयोचित कर्तव्य है। शारदत्त मितभाषी अक्रोधी सहिष्णु तथा शांत प्रकृति का व्यक्ति है, किंतु शारंगरव बहुत बोलता है और क्रोधी भी है। शारंगराव और राजा के विवाद के उग्र रूप धारण करने पर शारदत्त उसे शांत करता हुआ कहता है, संस्कृत शारंगराव विरम त्वमिदानीम, हिंदी शकुंतला से कहता है कि अब तुम राजा को विश्वास दिलाओ, संस्कृत शकुंतले दीतामस्य प्रत्ययति प्रतिवचनम, हिंदी अंत में वह राजा से कहता है शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे रखें या छोड़ें इस पर आपका अधिकार है, अब हम लोग जाते हैं, संस्कृत तदेशा भवतः पत्नी त्यजिवैनाम ग्रहाणवा, हिंदी इस प्रकार कालिदास ने शारदत्त की अपेक्षा शारंगराव का चरित्र अधिक विकसित किया है, वह अपने गुरु को सर्वज्ञ एवं सर्वसिद्धि संपन्न समझता है, संस्कृत न खलु कश्चित विषयो नाम धीमताम, हिंदी पंचम अंक में राजा दुष्यंत से बातें करते समय कहता है कि राजन सिद्ध पुरुषों का मंगल सदैव आपके अधीन रहता है, संस्कृत राजन स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः, हिंदी शारंगराव तपोवन निवासियों को सत्यभाषी तथा राजनीतिज्ञों को असत्य बोलने वाला एवं दगाबाज समझता है, पंचम अंक में वह कहता है कि संस्कृत आ जन्मनः शाठ्यम शिक्षितो यह तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य, हिंदी उसकी इस उक्ति का तात्पर्य है कि राजनीतिज्ञों से सत्य और न्याय की आशा करना भूल है, शारंगराव स्त्री स्वातंत्र्य का समर्थक नहीं है, जब वह शकुंतला को राजा के पास छोड़कर अपने दल के साथ जाने लगता है तो शकुंतला भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है, जब गौतमी इस तरफ उसका ध्यान दिलाती है तो वह शकुंतला को डांट कर कहता है अई दोषकारिणी अब क्या तू स्वतंत्रता का अवलंबन करती है, संस्कृत आ पुरो भागिनी किमिदं स्वातंत्र्यम् अवलंबसे, हिंदी शारंगराव चापलूसी नहीं पसंद करता, पंचम अंक में जब पुरोहित राजा दुष्यंत के विनय की तारीफ करता है तब शारंगराव कहता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, सत्पुरुषों को समृद्धि के समय अनुदित होना ही चाहिए, श्लोक भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम विभुर्दुर्विलम्बिनो घना अनुद्यता सत्पुरुषः समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, अंक 5 श्लोक 12 हेडिंग अनुसुईया और प्रियंवदा, अनुसुईया तथा प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां हैं, ये तीनों ही अति सुंदरी हैं और इन तीनों की उम्र में विशेष अंतर नहीं है, प्रथम अंक में राजा दुष्यंत इनको देखते हैं तो कहते हैं कि समान अवस्था तथा समान रूप होने कारण आप तीनों की मित्रता बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है, संस्कृत अहो समान वयो रूप रमणीयम सौहार्द मत्र भवती नाम, हिंदी संभवतः इन तीनों में अनुसुईया सबसे बड़ी है, उससे प्रियंवदा छोटी है और शकुंतला इससे भी छोटी है, चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होते समय जब दोनों सखियां रोने लगती हैं तब महर्षि कर्ण पहले अनुसुईया को बाद प्रियंका को संबोधन कर कहते हैं अनुसुईये प्रियंवदे रो मत, तुम दोनों को चाहिए कि शकुंतला को ढांढस बधाओ, संस्कृत अनुसुईये प्रियंवदे अलम रुदितेन भवति भ्यामेव शकुंतला स्थिरा कर्तव्या, हिंदी जिस समय राजा दुष्यंत तपोवन में प्रवेश करते हैं उस समय अनुसुईया ही आगे बढ़कर उनसे बातें करती है और वही शकुंतला के जन्म का रहस्य बताती है, बाद में प्रियवंदा शकुंतला को उटज से फल मिश्र अर्धभाजन लाने के लिए कहती है, इससे प्रतीत होता है कि शकुंतला प्रियंवदा से भी छोटी है, सौंदर्य में प्रायः तीनों समान है फिर भी दोनों की अपेक्षा शकुंतला रूपवती है और उसका लावण्य उत्कृष्ट है, षष्ठ अंक में चित्र देखते समय जब माधव्य राजा दुष्यंत से पूछता है कि मित्र इस चित्र में तो तीन मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं और वे तीनों सुंदरी हैं, इन तीनों में शकुंतला कौन सी है, तब शानुमती अप्सरा अपने मन में कहती है कि इसने मेरी शक्ति शकुंतला का रूप नहीं देखा अतः इसकी आंखें निष्फल हैं, संस्कृत अनभिज्ञ खलवेश सखी रूपस्य मोघ चक्षुः, हिंदी इससे शकुंतला अधिक रूपवती प्रतीत होती है, अंत में विदूषक भी सौंदर्य के आधार पर ही शकुंतला को पहचानता है, तीनों में घनिष्ठतम प्रेम है, वे सभी एक दूसरे को सुखी देखना चाहती हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती हैं तथा उसे सगी बहन सी मानती हैं, तृतीय अंक में काम व्यतीत शकुंतला को अस्वस्थ देखकर दोनों ही चिंतित होती हैं, रहस्य ज्ञात हो जाने पर दोनों राजा और शकुंतला का संगम कराने का प्रयास करती हैं, मालिनी के तट पर लता मंडप में शकुंतला और राजा दोनों का मिलन हो जाने पर मृग शावक को माता से मिलाने का ब्याज बनाकर वे दोनों वहां से निकलकर बाहर खड़े होकर देखती हैं कि कोई वहां जाकर उन्हें देख न ले, जब गौतमी आती है तब वे चक्रवाक वधु को कुछ कहने के बहाने शकुंतला को सूचित कर देती हैं, दोनों ही शिष्ट विनीत वाक्पटु एवं मधुर भाषिणी हैं, दोनों कर्मठ और बुद्धिमती हैं, आश्रम के कार्यों में दोनों का समान उत्साह है, दुर्वासा का शाप सुनकर दोनों चिंतित होती हैं, उनसे अनुनय विनय कर शाप निवृत्ति करा लेती हैं, शकुंतला की विदाई के समय दोनों व्याकुल हो जाती हैं। उसके बिना उन्हें आश्रम सूना सा प्रतीत होता है, उसमें प्रवेश करने से कष्ट होता है। वे महर्षि कर्ण से कहती हैं, संस्कृत, तात शकुंतला विरहितम शून्यमीव तपोवनम कथम प्राविशावह। हिंदी, इस प्रकार दोनों के चरित्रों में साम्य होते हुए भी कुछ वैषम्य भी है। जहां अनुसुईया गंभीर स्वभाव की है, उसमें परिपक्व बुद्धिता अधिक है, वहीं प्रियंवदा विनोदशील एवं चुलबुली है, उसमें परिपक्वता की मात्रा कम है। राजा दुष्यंत के आश्रम में आने पर अनुसुईया उनकी अगवानी करती है तथा विश्वामित्र और मेनका से शकुंतला की उत्पत्ति बतलाकर उनकी जिज्ञासा शांत करती है। उसको किसी के प्रति अनुसुईया नहीं होती, हमेशा सबको खुश करने की बात सोचती है, अतः उसका नाम अनुसुईया है। न विद्यते असुया यस्याम सा अनुसुईया। प्रियंवदा मधुर भाषिणी अपने नाम के अनुसार मनोत प्रिया है। उसका विनोद अपमानजनक न होने से कष्टदायक नहीं होता, उसमें एक प्रकार की मिठास रहती है। यही कारण है कि जब वह शकुंतला से मजाक करती हुई पूछती है कि अनुसुईये, जानती हो कि शकुंतला वन जन्य उत्सनास को क्यों प्रेम से देख रही है? इस पर अनुसुईया कहती है कि नहीं समझ पा रही हूँ, तुम ही बतलाओ। इस पर प्रियंवदा कहती है कि सखी, यह सोच रही है कि जिस प्रकार वन ज्योत्ना योग्य वृक्ष से मिल गई, वैसे ही मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी। तब वह गदगद होकर कहती है, संस्कृत, अतएव प्रियं वदेति भाष्य से एष ते आत्मनिश्चितगतो मनोरथः। हिंदी, प्रियंवदा इधर उधर की बातों में अधिक भाग लेती है। जब राजा कहता है कि आपकी सखी के विषय में हमें और भी कुछ पूछना है, तब प्रियंवदा झट कह देती है कि विचार करने की आवश्यकता नहीं, तपस्वियों से कोई भी बात निसंकोच पूछी जा सकती है। संस्कृत, अलम विचारेण अनियंत्रणानुयोग तपस्वी जनो नाम। हिंदी, जब राजा पूछता है कि आपकी प्रिय सखी क्या विवाह पर्यंत तपस्वी बनी रहेगी या विवाह न करके मृगियों के साथ जीवन पर्यंत निवास करेगी, तो वह ऊपर उत्तर देते हुए कहती है कि महानुभाव, धर्माचरण में भी यह शकुंतला पराधीन है, फिर भी पिताजी का इसे योग्य वर देने को विचार है। जब शकुंतला रुष्ट होकर बकवाद करने वाली प्रियंवदा की शिकायत करने के लिए आर्य गौतमी पास जाना चाहती हैं, तब वह यह कहकर उसे रोकती है कि तुम मेरे दो वृक्षों के सींचने की ऋणी हो, मैंने तेरी क्यारी के दो वृक्षों को जल से सींचा है, अतः तेरे ऊपर मेरे दो वृक्ष का ऋण बाकी है, पहले उनसे छुटकारा लो तब जा। संस्कृत, द्वे में वृक्ष सेचन के धारयसी ताभ्याम तावदात्मनम मोचय ततो गमिष्यसी। हिंदी, प्रियंवदा दुष्यंत शकुंतला के परस्पर आकर्षण को भांप कर शकुंतला से विवाह विषयक हंसी करती हुई चुटकी लेती है। सखी शकुंतले, यदि यहाँ आज पिताजी होते तो। संस्कृत, हला शकुंतले यद्यतात्र तातः सन्निहितु भवेत। हिंदी, इसलिए प्रियंवदा विनोदी है, अनुसुईया स्वल्प भाषणी और गंभीर है, वह किसी बात पर सहसा विश्वास नहीं करती, सभी पहलुओं पर सोचती है, हानि लाभ का विचार करती है, ऊहापोह करने के बाद ही वह निर्णय करती है। तृतीय अंक में दुष्यंत शकुंतला के वैवाहिक संबंध के पूर्व राजा दुष्यंत से कहती है कि राजाओं की कई पत्नियां होती हैं, अतः जिस प्रकार मेरी प्रिय सखी शकुंतला शोक का कारण न बने, ऐसा उपाय कीजिएगा। संस्कृत, बहुवल्लभा खलु राजा न श्रूयंते तद यथा इयम न प्रिय सखी बंधुजन शोच्या न भवती तथा करिष्यसी। हिंदी, प्रियंवदा का स्वभाव ठीक इसके विपरीत है, वह शीघ्र विश्वास कर लेती है, सभी कार्यों से होने वाली भलाई को सोचती है, बुराई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं आता। चतुर्थ अंक में अनुसुईया दुष्यंत के हस्तिनापुर चले जाने पर अनुसुईया चिंतित है कि निवास में मग्न होकर राजा शकुंतला का स्मरण करेगा या नहीं। इस पर प्रियंवदा कहती है कि अनुसुईये, तुम विश्वास रखो, क्योंकि दुष्यंत के समान आकार वाले लोग गुणहीन नहीं होते। संस्कृत, तत्र तावत् विश्वस्ता भव नहीं तादृशा आकृति विशेषा गुण विरहिणो भवन्ति। हिंदी, अनुसुईया दूरदर्शनी है, वह भविष्य की चिंता करती है, प्रियंवदा सरल है, वह भविष्य के झंझट में नहीं पड़ती, वर्तमान से ही संतुष्ट रहती है। अनुसुईया धीर प्रकृति की है और प्रियंवदा शीघ्र घबरा जाती है, वह दुर्वासा के शाप को सुनकर घबरा उठती है और किंकर्तव्य मूढ़ हो जाती है, किंतु अनुसुईया धीरता रखकर महर्षि को मनाने के लिए उसे भेजती है। और जब प्रियंवदा घबराती है कि तीर्थयात्रा से लौटने पर राजा के साथ शकुंतला का विवाह सुनकर पिताजी न जाने क्या कहेंगे, तब अनुसुईया समझाते हुए कहती है, कन्या को अनुरूप वर के हाथ सौंपना चाहिए, यह पहला विचार है, यदि देव आकार स्वयं बना दें तो गुरुजन कृतकृत्य ही होंगे। संस्कृत, अनुरूपस वरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादनीयाम अयम तावत् प्रथमः कल्पः तम यदि दैवं संपादयति ननु कृतार्थो गुरुजनः। हिंदी, अतः पिताजी के अप्रसन्न होने की कोई बात ही नहीं, प्रेमवदा भावावेश में बहती है। वह कोई काम करते समय तो बिना सोच विचार कर देती है, बाद में उसे घबराहट होती है। दुष्यंत को शकुंतला से मिलाने के समय तो उसने पिताजी को नहीं सोचा, अनंतर वह उनसे भयभीत हो उठी। अनुसुईया से कहने लगी कि मुझे तो यह चिंता है कि पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आकर और राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गांधर विवाह सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। संस्कृत: एतावत् पुनश्चिन्तनीयं तातस् तीर्थयात्रातः पतिनिवृत्तः इमं वृत्तान्तः श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यते। हिंदी: इस प्रकार शकुंतला की दोनों सखियों अनुसुईया तथा प्रियंवदा के चारित्रिक समता एवं विषमता पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न प्रकृति की आदर्श महिला हैं। इन दोनों के साथ शकुंतला का घनिष्ठतम संबंध है, अभी दोनों कुमारी हैं। हेडिंग: गौतमी। गौतमी महर्षि कर्ण की धम्म भगिनी और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। वह अत्यंत सीधी साधी तपस्विनी हैं। उसके प्रभाव से आश्रम की व्यवस्था ठीक चलती है, सभी आश्रमवासी उसका आदर करते हैं। वह शकुंतला को बड़ा प्यार करती है। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के दर्शन से काम पीड़ित होकर मालिनी नदी के तट के समीपवर्ती एक लता मंडप में शिला फलक पर विराजमान होकर समय बिताती है, तब उस बिचारी तपस्विनी गौतमी को क्या मालूम कि शकुंतला किस खेल में अलमस्त है। वह शकुंतला के शारीरिक ताप का समाचार सुनकर स्वच्छता के लिए तत्काल मंत्रपुत्र दर्भोदक हाथ में लेकर उसके पास पहुंचती है। उससे उसके शरीर पर सींच कर प्यार से पूछती है, बिटिया तुम्हारे शरीर का संताप क्या कुछ कम हुआ? शकुंतला कुछ लाभ होने का उत्तर देती है। उस वृद्धा तापसी के आने के पूर्व ही शकुंतला की बीमारी की वास्तविकता दवा राजा दुष्यंत तो मिल ही गए हैं, किंतु उस बेचारी को क्या पता। वह अपने उपचार से आराम का अनुभव करके शकुंतला को साथ लेकर कुटी पर चली जाती है। उस वृद्धा तपस्विनी गौतमी के सदाचार और सद्व्यवहार का ही परिणाम है कि कुलपति कर्ण जैसे महर्षि भी उसका समादर करते हुए शकुंतला की विदाई के अवसर पर शारंगराव द्वारा दुष्यंत को संदेश देकर पूछते हैं कि इस विषय में गौतमी का क्या मत है। संस्कृत: कथम वा मन्यते गौतमी। हिंदी: इस पर गौतमी कहती हैं कि वधुजनों के लिए इतना ही उपदेश पर्याप्त है बेटी, इस अमृतोपदेश को स्मरण रखना। संस्कृत: एतावाने वधुजन स्योपदेश जाते एतत् खलु सर्वधारय। हिंदी: शारंगरव शारदत्त तथा शकुंतला के साथ हस्तिनापुर में दुष्यंत के दरबार में उपस्थित हो राजा के समक्ष गौतमी जिस धैर्य एवं सरलता से अपना कर्तव्य निभाती है, उससे पाठकों का हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ उसका भी अपमान करते हुए स्त्री समूह की निंदा करते हैं, उन्हें धूर्त बतलाते हैं। श्लोक: स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व ममानीशीषु संदृश्यते किमुत यः प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वं पत्यजात मन्यर्द्विजः परिभृतः खलु पोषयन्ति। अंक 5 श्लोक संख्या 22। हिंदी: किंतु तपस्विनी गौतमी शांत और निर्विकार बनी रहती है, इससे उसकी समुद्र जैसी गंभीरता पृथ्वी की भांति सहनशीलता तथा मुनियों जैसी क्षमाशीलता व्यक्त होती है। गौतमी के समान विशुद्ध पावन चरित्र भारतीय महिलाओं के लिए आदर्श का निदर्शन है। हेडिंग: सर्वदमन अर्थात भरत। अभिज्ञान शकुंतल के अनुसार देवताओं की माता अदिति तथा पिता महर्षि कश्यप के आश्रम हेमकूट पर्वत पर शकुंतला के गर्भ से उसकी माता मेनका अप्सरा के पास सर्वदमन का जन्म हुआ था और वहां ही उसके जात कर्म आदि संस्कार उत्पन्न हुए। यह बचपन से ही बड़ा तेजस्वी एवं चंचल बालक था, शेर के बच्चों के साथ खेलता और जबरदस्ती उनका मुख दबाकर उनके दांत गिनता था। जिस समय राजा दुष्यंत इंद्र के शत्रु दुर्जय नामक दैत्यगण को युद्ध में परास्त कर इंद्र के रथ से अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय वे मरीचिनंदन महर्षि कश्यप के दर्शनार्थ रथ से उतर पड़े तथा इंद्र सारथी मातली दर्शन का अवसर जानने के निमित्त उनके पास चला जाता है। राजा दुष्यंत एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। वहीं खेलते हुए शेर के बच्चे का दांत गिनते सर्वदमन को देखकर दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं, यह किसका बालक है जिसकी गोद में धूल दूषित यह बालक खेलता होगा, वह व्यक्ति धन्य है। इतने में एक तापसी दूसरे से कहती है कि यह बालक बड़ा चपल हो गया है, शेर के बच्चे को तंग कर रहा है। कुटी में जाकर शकुंतला इस पर सर्वदमन कहता है कि मेरी माँ शकुंतला कहाँ है। तब राजा दुष्यंत तापसी से पूछते हैं कि यह किसका बालक है। इस पर वह कहती है, यह बालक पुरुवंश के एक राजर्षि का औरस पुत्र है। इस पर वे पुनः पूछते हैं कि उसका क्या नाम है। तब वह कहती है कि अपनी पत्नी का त्याग कर देने वाले का नाम कौन ले। इस पर दुष्यंत पुनः अपने मन में सोचते हैं कि ये सारी बातें तो मुझ में ही घटती हैं और इस बालक को देखकर मुझे औरस पुत्र के समान स्नेह भी हो रहा है। इतने में दूसरी तापसी मिट्टी का मूर लेकर आ जाती है। उसे लेने के लिए जब बालक हाथ पसारता है तो उसमें चक्रवर्ती के चिन्ह देखकर राजा और प्रसन्न हो जाते हैं। तब तक तापसी बोल बैठती है, हाय, जन्म के समय रक्षार्थ महर्षि द्वारा इसके हाथ में बधा हुआ रक्षा सूत्र कहाँ गिर गया। इस पर दुष्यंत तत्काल जमीन से उठाकर कहते हैं कि यह है। इस पर वे आश्चर्य करने लगती हैं। तब दुष्यंत पूछते हैं कि आप लोग क्यों आश्चर्य करती हैं। तब वे कहती हैं कि इस बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्य के उठा लेने पर यह सांप बनकर काट लेता है। इतने में शकुंतला वहां आ जाती है, जिसे देखकर राजा दुष्यंत उससे अपनी भूल पर क्षमा मांगने लगता है। तब तक मातली आकर कहता है, राजन, कश्यप जी दर्शन के लिए तैयार बैठे हैं, कृपया आप अपनी पत्नी और पुत्र के साथ चलकर उनका दर्शन करें। तदनुसार वे सभी जाकर उनका दर्शन कर प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद देते हुए महर्षि कहते हैं, दुष्यंत, मैंने पहले ही जान लिया था कि दुर्वासा के शापवश आपने किण्व पुत्री का त्याग कर दिया था। वह शरदमन जयंत जैसा प्रतापी है और यह साध्वी शकुंतला इंद्राणी समान सौभाग्यवती है। इनके साथ राजधानी में जाकर सुखपूर्वक रहो। इंद्र तुम्हारे राज्य में प्रचुर वृष्टि करें और तुम प्रजाओं का पालन करो। इसके अनंतर राजा दुष्यंत सपत्नी कश्यप जी को प्रणाम कर अपनी राजधानी में जाकर स्वर्धमन के वो युवराज बना देते हैं और उसका नाम भरत रख देते हैं। बाद में इसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार शकुंतला की मात्र स्थानीय वृद्धा गौतमी, शेर के बच्चे को उसकी माता के पास से उसके दांत गिनने वाला निर्भीक शिशु स्वर्धमन, मालिक की मर्जी देखकर चलने वाला सेनापति, गरीब किंतु अपनी जाति का स्वाभिमानी शक्र तीर्थ निवासी जालोपजीवी धीवर, सिद्ध साधक बनकर अपराधी कबर अत्याचार करने का विचार करने वाले, परंतु उसके पास पुरस्कार के पैसे देखते ही मध्य की आशा से क्षण भर में बदल जाने वाले पुलिस के सिपाही और उनका अफसर, राजा का साला, नगर रक्षक, इन सबके चित्र भी बड़े मनोरंजक और सटीक उतारे गए हैं। इन सभी पात्रों के चित्रण को देखकर कालिदास की मार्मिक सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति पर अत्यंत आश्चर्य होता है। हेडिंग, पात्र परिचय। सूत्रधार अर्थात नाटक प्रधान का पात्र तथा रंगमंच का अध्यक्ष। दुष्यंत अर्थात नाटक का नायक, हस्तिनापुर का राजा। सूत अर्थात राजा दुष्यंत का सारथी। वैखानस अर्थात कर्ण के आश्रम का ब्रह्मचारी। विदूषक अर्थात माधव्य अर्थात वेशभूषा, आकार एवं वाणी द्वारा दुष्यंत का हास्यकार मित्र एवं धर्म सचिव। भद्रसेन अर्थात राजा दुष्यंत का सेनापति। रैवतक अर्थात दवारिक द्वारपाल, राजा का द्वार रक्षक। ऋषि कुमार अर्थात महर्षि कर्ण के आश्रम में रहने वाले दो मुनि बालक। वैतालिक अर्थात राजा दुष्यंत के दरबार में स्तुति पाठक दो भाट। कण्व अर्थात आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक पिता। हारित अर्थात कुणपति कर्ण का एक शिष्य। शारंगरव कुलपति का व्यावहारिक शिष्य। सारदत्त अर्थात कुलपति का गंभीर शिष्य। कंचुकी अर्थात राजा दुष्यंत का नौकर, रनिवास की देखभाल करने वाला। करभक अर्थात हस्तिनापुर निवासी, माताओं का संदेश वाहक दूत, वातायन। पुरुष धीवर अर्थात एक मछुआ। श्याल अर्थात राजा का शाला, नगर रक्षक, नगर का कोतवाल। सूचक जानुक अर्थात नगर के सिपाही। सोमरात अर्थात राजा का पुरोहित। मातली अर्थात इंद्र का सारथी। मारिच अर्थात ब्रह्मा जी के पौत्र, मारिची के पुत्र, प्रजापति कश्यप। सर्वदमन भरत अर्थात शकुंतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत का औरस पुत्र। गालव अर्थात महर्षि कश्यप का शिष्य। स्त्री पात्र में प्रमुख चित्रण। नटी अर्थात सूत्रधार की पत्नी। शकुंतला अर्थात नाटक की नायिका, महर्षि कर्ण की पोष पुत्री एवं मेनका से विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न कन्या। अनुसुईया एवं प्रियवदा अर्थात शकुंतला की प्रिय सखियां। गौतमी अर्थात कुलपति कर्ण की धर्म भगिनी। प्रतिहारी अर्थात राजा दुष्यंत की परिचायिका। शानुमती या मिश्र केसी अर्थात मेनका की प्रिय सखी, एक अप्सरा। परिभृतिका मधुरिका अर्थात राजा दुष्यंत के परमदवन की परिपालिक दासियां। चतुरिका अर्थात चेटी या राजा दुष्यंत की दासी। प्रथमा तापसी अर्थात महर्षि कश्यप के आश्रम में रहने वाली स्वर्धमन की रक्षिका दासी। द्वितीया तापसी अर्थात महर्षि कश्यप के आश्रम में रहने वाली स्वर्धमन की रक्षिका दासी। अदिति अर्थात महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी, देवताओं की माता, दक्ष की कन्या। अन्य पात्र प्रमुख। मधवा अर्थात देवताओं के राजा इंद्र, हरि, अखंडल, शत्रुकतु, सहस्त्राक्ष आदि। दुर्वासा अर्थात एक ऋषि, महर्षि अत्रि तथा अनुसुईया जी के पुत्र। कौशिक अर्थात कुशिक के पुत्र तथा शकुंतला के जन्मदाता पिता राजर्षि विश्वामित्र। मेनका अर्थात इंद्रपुरी की एक अप्सरा, शकुंतला की माँ। जयंत अर्थात शची, इंद्राणी से उत्पन्न इंद्र का पुत्र। नारद अर्थात देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी के अंगज पुत्र। हंसपदिका राजा दुष्यंत की अन्यतमा भार्या सुमति अर्थात दुष्यंत की अवसरज्ञा धर्मपति। इस प्रकार भूमिका पात्र संपन्न।